राम राम हरे 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 कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान बुनाके में कार्तिक मास में भगवान दामोदर की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्री प्रभुपाद के द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया हुआ उसका श्रवण कर रहे हैं। नमाम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। हम सबका भगवान के साथ संबंध है। हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका भगवान के साथ रिश्ता नहीं है। कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा और भगवान का नित्य संबंध है। और ये नित्य संबंध श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अनुसार चार विशेष रूप से नित्य संबंध जीवों का भगवान श्री कृष्ण के संग में है। दास्य, भगवान हमारे मालिक हैं, हम भगवान के सेवक हैं, जैसे हनुमान जी श्री रामचंद्र के नित्य सेवक हैं। सखा, भगवान के संग मित्रता का संबंध, जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सखा है। वात्सल्य, भगवान बेटा बन जाता है और भक्त भगवान का माता पिता बन जाता है, जैसे माँ यशोदा कौशल्या। और माधुर्य, भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेमी बन के भगवान से प्रेम करते हैं। इसका उदाहरण गोपियां हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है। तो ये संबंध चार प्रकार का हम सबका भगवान के संग है। ये कथा करने का उद्देश्य क्या है? भागवत के अंदर जब भागवत की कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में जो भगवान के साथ संबंध है और जो हमको याद नहीं है वो कोई विशेष लीला में हमको उसमें बहुत आनंद आने लगेगा। कोई विशेष लीला में, जिस लीला में ऐसे बहुत ज्यादा आनंद बार बार आने लगे तो वैसे वो संबंध हमारा भगवान के साथ है। ये अनुभव करने के लिए ये कथा की जाती है। भागवत को बार बार सुनना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र 100 बार से अधिक चैतन्य महाप्रभु ने सुना, more than 100 times। क्यों? ध्रुव चरित्र 100 बार सुनने की क्या जरूरत है? कितनी निष्ठा है ध्रुव महाराज में। हाउ मच ही इज डिटरमाइंड टू हैव दर्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। कितना उसका संकल्प दृढ़ है भगवान का दर्शन करने का। ये जो डिटर्मिनेशन है ये भगवान को बहुत अच्छी लगती है कि इसका संकल्प बहुत दृढ़। ही इज फर्मली फिक्स्ड, ही इज डिटरमाइंड। तो भगवान जब देखता है कि इसका संकल्प दृढ़ है तो फिर भगवान उसके हाथ आ जाता है। तो ये कथा, अब जो कथा चल रही है, ये भगवान के वात्सल्य भाव की कथा है कि भगवान को बालक समझकर माता पिता बन के कैसे प्रेम करना चाहिए। और भारत के अंदर तो बहुत से ऐसे वैष्णव है जिनके घर में छोटा सा लड्डू गोपाल होता है, हाथ में लड्डू लिया हुआ गोपाल होता है, और उसको उस माता ऐसे सेवा करती हैं जैसे वो बेटा है। उसको बोलते हैं लाला, ये हमारा बेटा है। सुबह उठ के मक्खन खिलाती हैं, सेवा करती हैं, झूले में झुलाती हैं। तो ये जो भाव है ये भागवत से यशोदा माँ से लिया गया है। तो हमको यशोदा माँ का चरित्र इसलिए समझना चाहिए कि जिसका वात्सल्य भाव भगवान की प्रति है, भगवान के संग है, वो यशोदा माँ के पीछे चलना चाहिए। कि यशोदा माँ कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर रही है, कैसे कृष्ण की सेवा कर रही है, ये सीखने के लिए बहुत जरूरी है। दास्य भाव भगवान की आज्ञा पालन करनी होती है, बाहर बैठा होता है। सखा भाव उससे थोड़ा और गहरा है, जिसमें दास्य तो है लेकिन सखा में इतनी गहराई है कि अंदर कमरे में जाके बैठ के बात कर सकते हैं। सखा से वात्सल्य गहरा है, जिसमें सखा भी है सेवा भी है लेकिन भगवान को छोटा समझकर बड़ा बनकर उसका पालन पोषण करने का भाव है। और माधुर्य उससे भी गहरा हो जाता है, जिसमें सेवा भी है सखापन भी है वात्सल्य भी है और माधुर्य भी है। तो माधुर्य परिकाष्ठा है। तो हम दर्शन कल कर रहे थे श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के नवे अध्याय से भगवान की दामोदर लीला का। भगवान को मां यशोदा ने रस्सी से पेट में रस्सी बांधी और उखल से बांध दिया तो भगवान का नाम दामोदर हो गया। ये भी नया नाम भगवान को मिला है, पहले भगवान का ऐसा नाम दामोदर नहीं है। एक जगह पानी का छोटा सा तालाब था, कुआं था, तो आते जाते साधु वहां रहते थे। एक आदमी वहां सेवा के लिए रुका हुआ था तो एक साधु वहां से गुजरते हुए उसको बोलता है, तुम यहां क्या करते हो, सेवा करते हो लेकिन तुम्हें सीताराम सीताराम तो बोलना चाहिए ना, तुम बैठ के सीताराम सीताराम बोला करो, अच्छा है भगवान का नाम लेना चाहिए। वो तो बेचारा इतना साधु सरल था, वो जो सेवाधारी उसको ये नहीं समझ में आया क्या बोला इसने। वो साधु चला गया, उसको सीताराम तो समझ में आया नहीं, बोलता है घसीताराम 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 घसीताराम। दूसरा साधु वहां से गुजरा, बोला ये क्या कर रहा है, घसीताराम क्यों बोलता है, सीताराम को घसीताराम बोला दिया। बड़ा डांटने लगा उसको, घसीताराम क्यों बोलते हो। इतनी देर में आकाशवाणी हुई कि नहीं, मेरा नाम घसीताराम है। भगवान ने कहा मेरा नाम घसीताराम है, माँ ने जब उखल से बांधा था मैं उखल को घसीट के गया था पीछे, तो घसीट के उखल को गया था तो मेरा भी नाम, ये नया नाम है इसने दे दिया है, बहुत अच्छा है। पहले दामोदर कहते हैं, अभी मुझे घसीताराम कहते हैं कि उखल को घसीट के मैं गया था। और एक बहुत बड़ा हलवाई है बॉम्बे में, उसका नाम है घसीताराम हलवाई, उसका नाम है घसीताराम, ये नाम लोगों ने रखे हैं घसीताराम। बहुत बड़ा प्रसिद्ध हलवाई है घसीताराम बॉम्बे में, वो पुराना कराची का हलवाई है घसीताराम। तो भगवान का नाम ऐसे दामोदर, ये भी नया नाम। और इसमें लिखा है कि अतृप्तम, भगवान दूध पीने से संतुष्ट नहीं हुए, ये भी भगवान की नई विशेषता है। भगवान तो पूर्णमिदं पूर्णामिदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते, वो तो परिपूर्ण है, फिर अतृप्त कैसे हो गया। हा? ये भी नया नाम माता ने दे दिया कि ये अतृप्त हो गया, दूध पीने में संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये लीला में भगवान के बहुत विशेष नामों का अंकन हुआ है। अब हम कल दर्शन कर रहे थे, मां भागते हुए कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण रोने लगे और भयभीत जो हो गए, तो मां ने लाठी फेंक दी हाथ से और कृष्ण को बांधने का संकल्प किया, वो भी प्रेम के वश होकर कि बच्चा डर के मारे भाग न जाए। और अभी सुबह सुबह है, कुछ खाया नहीं है, तो बच्चे को कोई और घर में है भी नहीं, सब दासियों को तो अलग काम में लगा दिया है, तो बच्चा डर के मारे कहीं भाग गया तो इसको कौन ढूंढने जाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए बांध के रखती हूँ और ताजा मक्खन निकाल के दो रोटी पका लेती हूँ, फिर इसको आके बुलाऊंगी तो ये माखन देख के अपने आप कहेगा मैया माखन दो, तो बस खुश हो जाएगा। थोड़ी देर बांध के रखने में क्या। तो मैया ने बांधने का संकल्प किया, रस्सी ली, उखल में बांधी और कन्हैया के पेट के ऊपर चारों घुमाई तो रस्सी छोटी हो गई, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी, तो रस्सी के ऊपर रस्सी, रस्सी के ऊपर रस्सी। तो गोपियां इकट्ठी हो गई बड़ी उम्र की देखने के लिए, सब गोपियों ने कहा कि यशोदा क्या कर रही हो। बोला आज इसको बांधूंगी, घर में मटका फोड़ा है, मक्खन चोरी किया है, बंदरों को खिलाया है। बोले तुम छोड़ दो ना यशोदा, बोले तुम्हारे घर में इतना माखन खाता है, सारी की सारी इकट्ठी होके मुझे शिकायत देने आती हो और मेरे घर का मटका तोड़ा है तो तुम्हें कोई शिकायत चिंता नहीं है, बोलती है छोड़ दो।
यशोदा मैया बोलते रोज तुम लोग मेरे घर में आती हो कि मेरे घर से माखन खा के गया, आज मेरे घर का माटका आपकी कोई छोटी सी मटकी तोड़ती है तो शिकायत लगाती हो, और मेरा इतना बड़ा मटका तोड़ गया और तुमको बोलती इसको छोड़ दो, आज नहीं छोड़ूंगी इसको। यशोदा और गोपियों के बीच में बात हो रही है और ये हंसी मजाक में बात हो रही है, गोपियां भी मुस्कुरा रही हैं और कहें ये नहीं बंधन में आएगा, हम इसको जानते हैं। एक गोपी ने तो ऐसे भी कह दिया कि एक बार हमने इसको बांध के रखा, पकड़ लिया, मक्खन चुराते हुए पकड़ा और इसको बांध दिया हमने। जब इसको बांध दिया तो मैं गोपी कहती है बाहर बुलाने गई दूसरी गोपियों को कि अभी आओ इसको पकड़ के यशोदा के पास ले चलते हैं, रंगे हाथों पकड़ा है, वापस आई तो खोला खड़ा है ऐसे। हमने बोला तुम्हें अभी बांध के गई थी ऐसे कैसे खड़ा है? बोला तुम्हें बांधना ही नहीं आता है, बांधते कैसे तुम्हें मालूम है? बोला कैसे बांधते? बोला खड़ी हो जाओ। गोपी खड़ी हो गई, उसको बांधा और राम राम करके चला गया। तो वो तो बांधने वाला है नहीं, तो जो बांधते हैं उनको बांध के चला जाता है। क्यों बंध गया? बोला संबंध जो भगवान के साथ बनाया, भगवान ने मां के साथ संबंध जो बनाया, बेटा जो बना ना, संबंध में क्या है? संबंध सब लोग सुनते हो, संबंध में है क्या? बंधन। संबंध का मतलब बंधन। आप अपने और अपनी ओर देखो, आपका घर के साथ संबंध है ना, एक रस्सी है जो आपके पांव में और गले में बंधी हुई है, सुबह भले कहीं भी जाओ शाम को खींच के अपने घर आते हो कि नहीं आते हो? इसको बोलते हैं जहां संबंध होगा वहां बंधन होगा ही हो, जहां संबंध होगा वहां बंधन होगा। अब कन्हैया ने भी मां बना ली है और उससे संबंध किया है तो बंधन में पड़ना ही पड़ेगा। इस दुनिया में जो भी संबंध करोगे बंधन में पड़ना पड़ेगा, ये दुनिया में संबंध ही सबसे बड़ा बंधन है। लेकिन भगवान के साथ संबंध होना ये संसार के बंधन से मुक्ति है। तो मैया ने बांधने का परिश्रम किया, गोपियों ने कहा नहीं बंधेगा, और मैया मुस्कुरा के कहती कैसे नहीं बंधेगा, मेरा लाला मैं इसको जानती हूं, नहीं छोड़ूंगी, जरूर बांधूंगी। और जब मां ने कहा कि शाम तक भले सारे शहर की रस्सियां लाके भी इसको बांधूंगी, तो भगवान ने नजर उठा के मां की ओर देखा। जब मां की ये डिटर्मिनेशन देखी, ये मां का संकल्प देखा कि ये तो मुझे बांध के छोड़ेगी, तो भगवान क्यों नहीं बंध रहे थे? कल हमने आपको ये भी बताया था कि भगवान की सत्य संकल्प शक्ति और विभूति शक्ति भगवान को बंधन में नहीं आने दे रही थी। भगवान तो किसी के अधीन है नहीं, किसी के अंडर में है नहीं, कोई उसको बांध सकता नहीं है। लेकिन अब भगवान ने जैसे यशोदा मां के ऊपर दृष्टि डाली, अपनी मां के ऊपर, स्वमातो स्वेना गात्राय, अपनी स्वमातु अपनी माता, स्वेना पसीना पसीना गात्राय, देखा कि मां के सारे अंग भीगे हुए हैं पसीने से, इतना बड़ा मां ने परिश्रम किया है मुझे पकड़ने का और बांधने के लिए कितना जोर लगाया है कि सारी मां पसीने से तर हो गई है, भीगी हुई है, मेरे लिए इतना कष्ट उठाया मेरी मां ने मुझे बांधने के लिए पसीने में, विसरसत कबर सज, और मां के बाल जो बांधे हुए थे वो तो बिखर गए हैं, फूल सारे गिर गए हैं, इतना बड़ा परिश्रम मां ने किया है। दृष्ट्वा, ये जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा परिश्रमम, मां के परिश्रम को देखा, मां के हार्ड लेबर को देखा, परिश्रम, श्री प्रभुपाद देखें, ही कुड अंडरस्टैंड दैट शी वॉज नाउ ओवरवर्क्ड एंड फीलिंग फटीग्ड। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा मां ने अपनी शक्ति से अधिक प्रयास किया है और अब थक गई है। तब कृष्ण के हृदय में क्या आया? कृपया सीत, भगवान के हृदय में कृपा का प्रकट हुई, कृपा प्रकट हुई, दया और कृपा भगवान के हृदय में प्रकट हुई। जैसे ही भगवान के हृदय में कृपा प्रकट हुई, अहितुकी काजलेस मर्सी जिसको बोलते, तो बाकी सारी शक्तियां अपने आप दूर हट गई, सत्य संकल्प शक्ति भी एक तरफ हो गई, विभूति शक्ति भी चुप हो गई। जहां भगवान की करुणा शक्ति, दया की शक्ति, करुणा की शक्ति, काजलेस मर्सी जैसे भगवान के हृदय में उदय होती है,
बाकी सारी शक्तियां उसके सामने बिल्कुल शांत हो जाती हैं और भगवान स्वबंधने अपने आप बंधन में आ गए। मां तो नहीं बांध सकी लेकिन भगवान की करुणा के कारण भगवान अपने आप बंधन में आ गए। स्वबंधने अपने आप बंधन में आ गए। कौन से बंधन में आ गए? दामोदर भक्ति बधाम, भक्ति के बंधन में आ गए। रस्सी के बंधन में नहीं आए, रस्सियों से भगवान बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान भक्ति से बंधा। कौन सी भक्ति? मां का जो परिश्रम था, जो डिटर्मिनेशन थी, जो संकल्प था, वो भगवान ने देखा। यहां शिक्षा ये मिलती है कि भक्त को भगवान को प्राप्त करना है और भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान की काजलेस मर्सी हमारे ऊपर हो, ये अगर मन में इच्छा है तो पूरी शक्ति के साथ जितनी शक्ति है वो लगा के भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हम दुनिया में अपने घर के काम के लिए, बच्चे पालने के लिए, दुकान के लिए 8 घंटा रोज मेहनत मजदूरी करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन भगवान के लिए 1 घंटा कहते हैं आओ सत्संग में, तो भी बहुत से लोगों को बुखार आता है, नहीं आते हा? और कहते हैं और मंदिर में आए भगवान के कुछ ऐसे हाथ लगाएंगे, हाँ भगवान हमारे घर में ठीक हो, सब स्वस्थ हो, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारी पत्नी सदा के लिए सुंदर रहे, हमारे बच्चे बड़े पढ़े लिखे हों, ये भक्ति नहीं है। ये तो दुकानदारी ऐसी है जैसे किसी बड़े मॉल में जाओ और सामान सारा इकट्ठा करके पैसा दो और सामान उठाओ और बाहर चले जाओ, आओ कुछ भगवान को अर्पण करो, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी लिस्ट भगवान को देके जाओ ये सारे काम करना हमारे, ये भक्ति नहीं है। ऐसे अकेले भगवान श्री कृष्ण चाहते तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबको अकेले भगवान मार नहीं सकते थे क्या? वैसे अर्जुन को दिखाया विश्वरूप के मैंने इन सबको मार चुके हैं। आपने ये कथा सुनी है भीम का, अर्जुन का बेटा उल्पी से, अर्जुन ने एक शादी की थी मणिपुर में, उल्पी उसका नाम था, उससे एक बेटा हुआ था उसका नाम था बब्रुक वाहन, भागवत में इसका उल्लेख है लास्ट जगह पे। तो बब्रुक वाहन को जब पता लगा कि युद्ध कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला है, तो ये तो अर्जुन का बेटा था, वहां आया, बोले तो इतने सारे सेना लेके कहां जा रहे हो, मारना है, मैं अकेला मार के आ जाऊंगा। अच्छा, श्री कृष्ण खड़े हुए थे, बोला कैसे मारोगे? बोला मैं मार सकता हूं सबको। तो भगवान ने बोला तुम बाण, ये पेड़ जो है ना, ये ट्री जो है, इसमें ऐसा बाण मारो कि इसके सारे पत्तों के अंदर छेद होना चाहिए, होल हो जाए। उसने बाण मारा, सब पत्तों के अंदर छेद हुआ, एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा के रखा था, बाण आके वहां घूमने लगा। भगवान ने कहा ये तो निश्चित रूप से सबको मार देगा, भगवान तो जानते ही थे लेकिन सबके सामने। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और बब्रु वाहन का गर्दन काट दिया। गर्दन उसका कटा तो पांडव तो बड़े दुखी हो गए कि अरे हमारा एक तो बेटा और दूसरे हमारे सबको लड़ने से बचा के अकेला मारने जा रहा था और आपने भगवान इसको क्यों मार दिया? भगवान ने कहा कि ये कानून अपने हाथ में उठा रहा था, ही वॉज टेकिंग लॉ इन हिज ओन हैंड। कितने लोगों ने कितने वचन किए हुए हैं, जैसे भीम तुमने ये वचन किया है कि दुशासन की छाती का तुम खून पियोगे, तुमने ये भी भीम वचन किया है कि दुर्योधन की जांग को तुम तोड़ोगे, तो ये सबको मारेगा तो तेरे वचन कैसे पूरे होंगे? तो कई इस युद्ध में लोगों ने बड़े बड़े वचन किए हुए हैं और ये सबको मार देगा तो फिर तो दुनिया का नेम बदल जाएगा। उस वक्त बब्रुक वाहन का गर्दन जो है बोलने लगा, बोला मैं युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, आप युद्ध जरूर देखिए और एक बहुत बड़े मतलब कोई पेड़ के ऊपर किसी त्रिशूल के अंदर उसके सर को टांग दिया गया युद्ध भूमि के पास। जब युद्ध समाप्त हो गया, वार ओवर हो गई, तो किसी ने कहा कि मैंने इतने मारे, किसी ने कहा मैंने इतने मारे, तो श्री कृष्ण किसी ने कहा जरा पूछो तो बब्रुक वाहन ने, उसने युद्ध देखा है ऊपर से, बाकी तो मारे मारे वो तो सब मर गए, बचा तो कोई नहीं। बब्रुक वाहन से जब पूछा गया, बोला मैंने तो केवल सुदर्शन चक्र को चलते हुए और सबका गर्दन कटते हुए देखा, किसी ने किसी को नहीं मारा है, यह सब कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सबको मारा। और आज भी वो बबरुक वाहन के सर का राजस्थान में बहुत बड़ी पूजा होती है और उनका एक बड़ा स्थान है, उसको कहते हैं खाटू श्याम जी। वो जगह का नाम, उसका नाम श्याम जी के, वो उनका गर्दन जो है उसकी पूजा करते हैं। बोले कृष्ण भगवान ने इसको वरदान दिया था कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। आज भी राजस्थान में लाखों लोग पैदल जाते हैं उस स्थान के ऊपर जहां वो बबरुक वाहन का गर्दन गिरा था। तो असल में भगवान मार सकते थे सबको, लेकिन फिर भी अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो, परिश्रम तुमको करना पड़ेगा। भगवान जब कोई परिश्रम भक्त करता है और जब देखते हैं भगवान के इसका संकल्प दृढ़ है और ये काम करना ही चाहता है, तो फिर भगवान सहायता करते हैं। प्रभुपाद जी कहीं जा रहे थे, चलते हुए रास्ते में प्रभुपाद जी ने एक जगह देखा कि एक छोटा बेटा और उसका पिताजी दोनों खड़े हैं और पोस्ट का जो डब्बा है वो ऊपर है, बच्चा उसके अंदर लेटर नहीं डाल सकता है। तो प्रभुपाद ने देखा कि पिताजी ने बच्चे को ऊपर उठाया, फिर बच्चे का हाथ गया और लेटर डाला। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभुपाद वहां खड़े होकर देखते रहे और देखते भी रहे और बहुत अद्भुत उनके चेहरे पे भाव थे। तो भक्तों ने पूछा क्या देख रहे हैं प्रभुपाद जी? बोले मैं देख रहा हूं कि बच्चा ऊपर पहुंच नहीं सकता था और कभी भी ऊपर पहुंच के लेटर नहीं डाल सकता था, लेकिन बच्चा जो प्रयास कर रहा था उसके पिताजी ने उसके उसकी जो इंटेंशन को देखा और उसके डिटर्मिनेशन को देखा तो उसको सहायता देकर ऊपर उठाया, वो लेटर डाल दिया। ऐसे ही भक्त को जब भगवान देखते हैं कि ये मेरे पास आना चाहता है लेकिन अपने आप तो मूर्ख कभी आ नहीं सकता, इसको संसार के इतने बंधन पड़े हैं आ नहीं सकता, लेकिन इसकी इच्छा है आने की, तो इस बच्चे को जैसे पिताजी ने उठाया वो भगवान पिताजी की तरह उस बच्चे को उठा लेते हैं और अपने पास पहुंचा देते हैं आसानी से। तो ये छोटे बालक को पिताजी जैसे ऊपर उठाते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को ऊपर उठाते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के परिश्रम, प्रभुपाद जी अगर बैठे होते वृंदावन में और माला जपते और कहते चैतन्य महाप्रभु ने कहा है और मेरे गुरुजी ने भी कहा है पूरी दुनिया में प्रचार होना चाहिए, तो प्रचार तो भगवान कर सकते थे, लेकिन किसी को माध्यम से करते। भगवान किसी के ऊपर कृपा कब करते हैं? जब भक्त उंगली उठा के कहते हैं कि इसका उद्धार करो, तब भगवान करते हैं। अपने आप भगवान किसी का उद्धार नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते मैं सबके बराबर हूं। कोई भक्त जब कहता है कि इसका उद्धार करो, तब भगवान किसी का उद्धार करते, नहीं तो नहीं करते। ये श्लोक के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते एवं ऐसे समदर्शिता है अंग हरिणा भृत्य वश्यता। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बड़ा आश्चर्य हुआ परीक्षित महाराज, अंग अंकम हे परीक्षित महाराज, ये बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? भगवान अपने भृत्य, भृत्य कहते हैं नौकर को, भृत्य कहते हैं सर्वंट को, भृत्य मीन्स सर्वंट। कृष्ण एकल ईश्वर और सब भृत्य, एक भगवान मालिक है बाकी सब सेवक है, ये जो सिद्धांत है। लेकिन यहां क्या है, भृत्य वश्यता, भगवान अपने सेवक के कंट्रोल में आ गए। भृत्य भृत्य वश्य, प्रभुपाद जी कहते भृत्य वश्यता का मतलब ये नहीं है कि सेवक के बंधन में आ गए, सेवक के प्रेम के बस में आ गए। जो सेवक का प्रेम है उसके इसके पीछे क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं स्ववशेनापि कृष्ण, कृष्ण के ऊपर किसी का बस नहीं चलता, वो तो अपना मालिक स्वयं है, उसके ऊपर और कोई नहीं। अरे वो तो यश एदम शेषवरम वशे, अरे उन से सईश ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि जितने देव आदि देव हैं उन सब का वो मालिक है। ये सब देवता जिनके वश में हैं वो आज एक गोपी के वश में आ गया, अपने दास के वश में आ गया। ये तो परीक्षित बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, भक्त के वश में भगवान, भक्त के प्रेम के वश में आ जाता है। यहां पहले भी एक दिन आपको बताया था कि भगवान में और यशोदा के बीच में बहुत कॉम्पिटिशन शुरू हो गई। यशोदा बांधना चाहती है और भगवान बंधन में आना नहीं चाहते, और इस ये कॉम्पिटिशन बहुत देर तक चली। लेकिन जब हठ दोनों करते हैं ना,
तो भक्त का हठ जो होता है, भक्त की जो जो कॉम्पिटिशन में जो भक्त का डिटर्मिनेशन होता है वो हमेशा जीतता है और भक्त हार, भगवान हार जाते हैं। ये भगवान अजीत होते हुए भी भक्तों से जीत जाते हैं। भक्तिम जितत्वो, ये हम दामोदर स्तूप में कहते हैं कि ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। भगवान को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन भगवान अपने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। तो ही इज कॉन्कर्ड बाय हिज ओन डिवोटीज लव, प्रभुपाद ने कहा भक्त के प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। यहां बहुत बड़ा सुंदर है कि कोई नहीं बांध सकता है, लेकिन किसी से भयभीत भगवान नहीं है, लेकिन यशोदा से भयभीत भी है और यशोदा के बंधन में भी आ गए, यशोदा के सामने रोने भी शुरू कर दिया। तो ये भक्त भगवान से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? भक्त भगवान से बड़ा हो गया, भगवान छोटे हो गए और भगवान भक्त बड़ा हो गया। यही भगवान की भृत्य वत्सलता है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज, नैनम व्रंचो न भवो न श्रीरपि अंग संश्रय। न व्रंचो, ब्रह्मा को ऐसा सुख नहीं मिला। ब्रह्मा कहां है? भगवान के शरीर से चपका हुआ है। हाँ, विष्णु की नाभि में कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा, जो भगवान से जुड़ा हुआ है उस ब्रह्मा को भी ऐसा सुख नहीं मिला। न व्रंचो न भवो और न शंकर शंभू को ऐसा सुख मिला जो भगवान का बहुत निकट अंतरंग जुड़ा हुआ जैसे भगवान के साथ है, उसको भी ये सुख नहीं मिला। न श्रीयरपि अंग संश्रय, अरे ब्रह्मा को भूल जाओ कोई बात नहीं, शंकर को भी छोड़ो, लक्ष्मी को जो भगवान की छाती के ऊपर बैठी हुई है उसको भी ये सुख नहीं मिला। ऐसा सुख न ब्रह्मा को मिला, न शंकर जी को मिला, न लक्ष्मी को मिला। अब वैकुंठ में कोई भगवान को बांध सकता है क्या? प्रसादम, ये प्रसाद जो है, ये प्रसाद, प्रसाद माने भगवान की कृपा, ये प्रसाद ब्रह्मा जी को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला, ले भेरी गोपी, इस गोपी को मिला, इस गोपी को मिला। यत्यत् प्राप विमुक्तिदा, कृष्ण जो सारे संसार को मुक्त कर देते हैं वो स्वयं बंधन में इस गोपी के हाथों से आ गए हैं। इतना बड़ा आनंद और सुख ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी को भी नहीं मिला जो इस गोपी का भाग्य, क्या इस गोपी का भाग्य है? ये आपको हमने पहले भी दिन ये बताया था कि परीक्षित महाराज ने ये पूछा कि यशोदा को ये सुख कैसे मिला कि उसका भगवान स्तनपान करने लगे, उसका दूध पिया। नंद बाबा को ये सुख कैसे मिला कि उसके आंगन में खेला। वसुदेव और देवकी को तो ये सुख मिला ही नहीं, उन्होंने तो 11 साल के बाद अपने बच्चे को देखा, वो जेल के कमरे के अंदर से जन्म लेते ही भगवान को छोड़ के आए थे गोकुल में, और जब भगवान मथुरा आए तब उनसे मिले, तो उनको तो ये सुख मिला नहीं, ये इनको कैसे सुख मिला? तो वहां तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि इनके ऊपर आशीर्वाद, ब्रह्मा जी ने इसको आशीर्वाद दिया था, और द्रोण को और अपना क्या वसु, द्रोण वसु और धरा को, कि तुम्हारे को दया मिलेगी। आज यहां सिद्धांत कर स्थापित कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी को जो सुख नहीं मिला वो ब्रह्मा जी के वरदान से किसी और को थोड़ी मिल सकता है। इसका मतलब यशोदा भगवान की नित्य माता है, गोलोक में भगवान की माता यशोदा। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे, हम नहीं चाहते हैं कि जो आदमी जिस भी धर्म में है अपने मजहब में रहे, लेकिन जो उसकी शिक्षा है उसके अनुसार भगवान की सेवा करे और प्रेम करे। लेकिन हम ये जानते हैं कि लोगों को यह भी पता नहीं है भगवान कौन है। लोग भगवान कहते हैं लेकिन भगवान कौन है ये पता नहीं है, और फिर कहते हैं हमें पता है कि भगवान कौन है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसके माताजी का नाम क्या है, वो कहां रहते हैं,
वो क्या करते हैं, हमको हमारे को उनका पूरा डिटेल मालूम है। तो आपको अगर भगवान का पता नहीं है तो हम आपको भगवान का पता देते हैं, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ये सारी ही पूरे पूरी भगवान की पूरी कथा है। तो भगवान का हमको पूरा समाचार, भगवान का हमारे पास है, उसकी जानकारी चाहिए, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, ये समाचार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुख केवल इस गोपी को मिला जो परीक्षित महाराज इन सबको नहीं मिला। और इसके बाद सिद्धांत स्थापित करते ये श्लोक कहते हैं, नायम सुखा को भगवान देई नाम गोपी का सुतः। ये गोपी यशोदा नंदन जो है ना, ये सुख से नहीं मिलता है सबको। नायम सुखापो, सुख से इस भगवान जो गोपी का नंदन, ये गोपी सुत है जो नंद नंदन है, जो यशोदा नंदन है, ये लोगों को पता भी नहीं है इसको कैसे प्राप्त किया जाए। किसको पता नहीं है? ज्ञानी नाम, ये जो ज्ञानी है ये इसको कभी भी नहीं जान सकते। ज्ञानी तो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, उनको क्या पता कि गोपी का सुत भगवान जो है, यहां शब्द लिखा है भगवान गोपी का सुत, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये गोपी का सुत भगवान, इसको ज्ञानी नहीं जान सकते। च आत्मभूता नाम देही नाम, जो शरीर को सब कुछ समझ के संसार के अंदर शरीर के भोग में लगे हुए हैं कर्मी, वो तो कभी भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ज्ञानियों को भी ये समझ में नहीं आएगा। किसको समझ में आएगा? भक्ति मतामीय, जैसे भक्तों को ये समझ में आएगा, ऐसे न ज्ञानी को समझ में आएगा, न योगी को समझ में आएगा, न कर्मी को समझ में आएगा। जो शरीर के स्तर के ऊपर हैं, उनको ये कभी भी समझ में, गोपी का सुत नंद नंदन यशोदा नंद कभी समझ में नहीं आएगा। ये सुखदेव गोस्वामी निर्णय दे रहे हैं, ये संभव नहीं है कि कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण को, आदि गोपाल कृष्ण को कोई ज्ञानी जान सके, ये संभव नहीं। और फिर लीला में परिवर्तन आता है। कृष्णस्तु ग्रह कृत्येषु व्याघ्रायां मातृ प्रभु, भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा कृष्ण को वहां बांध कर और अपने घर में जो काम करना था, बहुत सुबह सुबह का टाइम था, बहुत काम करना था, दूसरे दिन बड़ा उत्सव था, तो व्याघ्रायाम बहुत जल्दी से वहां से चली गई घर का काम करने, गृह कार्येषु। और तब भगवान बंधे हुए थे, और कहते हैं बंधे हुए भगवान थे, तब सारे भगवान के ग्वाल बाल पास में आए, लाला ये क्या हो गया, किसने बांधा, चलो चलो खेले, कैसे खेलो, देखो पीछे ये उकल और वो भी पत्थर का है, कैसे करो, इसको टेढ़ा कर दो ना, इसको धक्का हम देते हैं, तुम चलो खेलेंगे साथ, तुम ऐसे खेले जाके। बलराम जी तब कहीं से आए, बलराम जी ने आके देखा, अरे कृष्ण इसको किसने बांधा है। खड़े खड़े बलराम जी को शेष भाव आ गया, शेष के भाव में आते ही कहते हैं, किसने बांधा है इसको, नहीं जानते कौन है, यही तो नरसिंह था, हिरण्यकश्यप को मारा था, यही तो राम था, वनवास में रावण को मारने गया था, यही तो वारा था जो पृथ्वी को लाया था, यही वामन देव था बलि से जो तीन पग में सब कुछ ले लिया। यशोदा अंदर सुन रही थी घर में, बोला क्या कह रहा है दाऊ। बलराम जी ने यह सुना तो अंदर से यशोदा कहती है, क्या सारे भगवान मेरे घर में आने थे और कोई घर नहीं मिला उनको, कि सबको यही आना था। और फिर अंदर से काम करती कर यशोदा कहती है, तुम छोड़ के इसको चले जाओ, इसको आज यहां बंधा रहने दो, और तुमने कुछ प्रयास किया तो तेरे को भी इसके साथ बांध दूंगी। आप तो बलराम जी भागे वहां से, बोला मैं तो नहीं खोल सकता। अब सब साथियों ने कहा, कृष्ण चलो खेलेंगे, चलो जो क्या है, बांधा है तो क्या हुआ, जरा धक्का दे दो इसको। और कुछ भक्तों ने, साथियों ने धक्का दिया, उखल टेढ़ा हो गया। टेढ़े उखल होते ही कृष्ण का अद्रक्षाद अर्जुनो पूर्वम गोयको धनात्मजो, भगवान की नजर सामने अपने आंगन में, नंद बाबा के आंगन में अर्जुनौ, दो अर्जुन पेड़ों के ऊपर पड़ी, दो बहुत बड़े वृक्ष थे, उनका नाम था अर्जुन वृक्ष। आपके यहां मॉरिशस में बहुत अर्जुन वृक्ष है, ये पुराना फ्लैक रोड है, इसके दोनों तरफ से जो वृक्ष हैं ये अर्जुन वृक्ष है। ये बहुत बड़े शक्तिशाली इनकी जड़ें होती है, ये आपके साइक्लोन में भी नहीं गिरते हैं। ऐसे दो अर्जुन वृक्ष थे और भगवान ने देखा रे, हाँ इनका नाम तो मेरे सखा के नाम के ऊपर है, एक तो मेरा बाल सखा अर्जुन है, एक आगे चल के अर्जुन दूसरा पार्थ मेरा सखा होगा, तो मेरे सखा का नाम और इसका नाम एक है, तो ये भी फिर जड़ जूनी में रहे और पेड़ रहे, ये अच्छा थोड़ी लगता भगवान के नाम से। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग नाम जो रखते थे ना, भक्तों के नाम रखते, भगवान के नाम से रखते थे, कि कहीं ना कहीं नारायण कहने से अजामिल की तरह बच्चे को हो सकता है कि किसी मृत्यु के समय जन्म के दूतों से मुक्ति मिल जाए। नाम ये टिफलू फिफलू मिफलू ऐसा नहीं रखते जैसे आजकल रखते हैं, टिंकू पिंकू, ये टिंकू पिंकू भगवान सुनेगा तो आंखें बंद करेगा, ये भूत कहां से आ गए। और किसी का सुधामा अर्जुन ऐसा किसी का नाम होगा, उद्धव सुधाना असुभान सुधामा अर्जुन, भगवान कहते ये तो मेरे सखा का नाम है, वो सखा के नाम के ऊपर उसका उद्धार कर देंगे। इसलिए नाम भी सोच विचार के ऐसा रखना चाहिए जो भगवान को प्रिय लगता हो, भगवान के प्रिय किसी भक्त का नाम रखना चाहिए। ये जो फैशनेबल नाम है ये बेकार से है नाम, इसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है वो किसी काम का नहीं। तो भगवान ने कहा ये मेरे मित्र के नाम से इनका नाम है, और फिर भगवान ने कहा मेरे भक्त नारद ने इनके ऊपर कृपा की है, इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? कुबेर आत्मजो, ये कुबेर के बेटे हैं, गुहको 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 कुबेर को कहते हैं, कुबेर के बेटे हैं। धन आत्मजो, वो धन का, कुबेर क्या है? ट्रेयर, डेमीगार्ड का ट्रेयर है, देवताओं का कोष अध्यक्ष है, उसके बेटे हैं। और सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, पुरा नारद शापे न, पहले नारद जी ने इसको शाप दिया था, वृक्षताम प्राप्त मदात, और ये वृक्ष हो गए। शाप क्यों दिया था परीक्षित ने, ऐसे क्यों शाप दिया? तो बोला मदात, मदात का मतलब मद कहते हैं अहंकार के अंध में, मद का अंध, बहुत बड़े नशे में थे। कौन से नशे में थे? धन मद अंध, पैसे का बहुत बड़ा अंध। सबसे बड़ा कौन सा अंध है दुनिया में? धन मद अंध। उनको नारद ने साप दिया था क्योंकि वो मद के अंध में थे, धन के मद के अंध में थे, और इसलिए उनको वृक्ष बना दिया था, पेड़ बना दिया था। और इनका नाम था नल कुबेरो मणिग्रीवावो इति ख्यातो, यही इनका नाम था, इस नाम से ये पहले प्रसिद्ध। दोनों देवता के पुत्र थे। अब इसके बाद दूसरी, इसलिए परीक्षित महाराज को तो बदरा बोला साप दिया था, साप तो मुझे भी ब्राह्मण ने दिया, इसको नारद ने साप क्यों दिया, ये प्रश्न पूछेंगे। तब फिर दूसरा अध्याय पूरा शुरू होगा कि इनको क्यों दिया था साप। अब भगवान के दामोदर लीला, दामोदर अष्टक में ये श्लोक आता है, कुबेरात मजो बदमूर्त यदवत, जैसे कुबेर के दो बेटों को जो जड़ बने हुए थे और आप बंधे हुए थे, मोचितो, उनको आपने मुक्त कर दिया, भक्ति भाजो, केवल मुक्त नहीं किया अपनी भक्ति भी दे दी। आज भी दोनों ये कुबेर के बेटे, ऐसी भगवान ने भक्ति दी है कि जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं, एक स्निग्ध कंठा एक मधु कंठ, मधु मतलब मीठा, स्निग्ध मतलब बहुत सुरीला, जिसका गाना है मधु कंठ, और स्निग्ध कंठ के नाम से ये दोनों कृष्ण कथा कहते हैं। कहां? दिन में नंद बाबा के पास करते हैं, शाम को गोपियों के बीच में ये कथा करते हैं दोनों। इनको ये स्थान दे दिया भगवान ने, इसलिए कहा है भक्ति भाजाओ कृतोच। अरे आपने तो उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, भगवान ने कहा क्या कहते हो, मैं उनको जानता भी नहीं हूं, वो तो मद अंध में थे, एक तो कुबेर के बेटे धन वाले, और फिर शंकर जी के अनुचर थे, और तीसरा जहां पूजा करनी चाहिए कैलाश में वहां बैठ के लड़कियों के साथ शराब पी के और नंगे नाच रहे थे, इनको मैं देखना भी नहीं चाहता हूं,
लेकिन मेरे भक्त नारद ने कह दिया था ना, तो नारद की बात मैं नहीं टाल सकता। मैं तो नारद के कारण इनका उद्धार किया, क्योंकि नारद ने इनको कहा था कि तुम्हारा कृष्ण उद्धार करेंगे। तब सत्यमूर्त मुनि कहते वैसी भक्ति मुझे भी दो। कैसी भक्ति? जैसे कुबेर के बेटों को दी थी वैसी भक्ति मुझे दो। तो कल ये जो दामोदर अष्टक के दो तीन श्लोक हैं, तीन श्लोक प्रार्थना के हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिवा से लेके तीन प्रार्थना के हैं, और दो हो रहे इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। और नल कुबेर मणिग्रीव और नारद गीता, ये जो दसवां अध्याय ये नारद गीता है, इसमें नारद की गीता के गीत का श्लोक है कि इस दुनिया के अंदर आदमी कैसे अंध में फंसता है और उसका इलाज क्या है, लेकिन वो इस बार नहीं कर पाएंगे तो कभी और करेंगे। तो यहां भगवान श्री कृष्ण को बंधा हुआ नहीं छोड़ते हैं, बंधा हुआ छोड़ना अच्छा नहीं है। भगवान ने जब देखा कि दो मेरे मित्र के नाम के ये पेड़ खड़े हैं, तो दोनों पेड़ों के बीच के अंदर से गुजर गए। उखल पीछे टेढ़ा था, उखल दोनों पेड़ों को लगा, भगवान ने जोर भी नहीं लगाया, थोड़ा आगे खिसके धड़ाम से दोनों पेड़ नीचे गिरे। पेड़ नीचे गिरे, बड़ा आवाज हुआ, खर्र करके ऐसा आवाज हुआ, लेकिन साइलेंसर लगा दिया भगवान ने थोड़ी देर के लिए कि साउंड कोई सुने नहीं। क्यों? बोलो दो पेड़ के अंदर से दो देवता निकले, दोनों देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना की, परिक्रमा की, और फिर उत्तर दिशा की तरफ चले गए। तब भगवान ने साइलेंसर को खोला, आवाज सुना नंद बाबा ने गोकुल में, अपने गौशाला में, जैसे नंद बाबा ने आवाज सुना भागते भागते वहां से गोपों के संग नंद आया, ये बड़े पेड़ किसने गिराए? अरे दोनों पेड़ों के बीच में ये बंधा हुआ कन्हैया कैसे इतना छोटा यहां कैसे आ गया? तो लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा नंद बाबा को, इसने दोनों पेड़ गिराए, इन दोनों पेड़ों से दो देवता निकले। नंद बाबा, इस बच्चे ने ये दो पेड़ गिराए, तुम बिल्कुल बच्चे हो, मूर्ख हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। वो बच्चा सच बोल रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी कि इसने गिराया। लेकिन एकदम भागते हुए नंद बाबा ने रस्सी खोली, उखल से कृष्ण को गोद में ले लिया। तो नंद बाबा वात्सल्य भाव से मां ने बंधा था, और सखा कोई खोल नहीं सकता था, केवल वात्सल्य भाव से ही खुलता। तो नंद बाबा तो वात्सल्य भाव की मूर्ति थे, खोला, गोद में उठाया, गौशाला में ले गए, दूध पिलाया, भूखा था। और तब तक बलराम जी आए, रोहिणी माता आई कि यशोदा ने सुना कि पेड़ गिरे हैं और मैंने बांधा था, कुछ वो चोट तो नहीं लगी? कि माता मूर्छित हो गई। तब कृष्ण भाग के वहां गए, और वहां माता रो रही थी, तो माता के आंसू पोंछने लगे कृष्ण, और कहा कि सुबह आपने मेरे आंसू बहाए, शाम को आपके आंसू निकले, जैसे आपने किया वैसे हुआ। अब घर सारे में सबके आंसू निकल रहे थे, सुबह तो कृष्ण रोया आंखों से, बोला आपने तो मेरी आंखें भी साफ नहीं की थी, मैं आपकी मैया आंखें साफ कर लेता हूं। तो ऐसे सब सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और यहाँ दामोदर लीला ऐसे समाप्त होती है। कल दामोदर अष्टक के दो तीन श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, श्री राधा दामोदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। कुबेरात्मजौ कौन है आज का, बुलाओ उसको, लोग जाएंगे तब तक कैसे करेंगे।